आगे आयत नंबर 160-161 से यहूद पर पाकीज़ा नेमते क्यों हराम की गई। आप बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे इस वक्त भी सूरत बकरा ही वाला अंदाज़ है कि कैसे चुने हुए लोगों को अल्लाह ताला महरूम कर देता है। फबी ज़ुल्म मिनल लज़ीन हादू हर्रमना अलैहिम तैयबात, और उनके जुल्म की वजह से वो लोग जिन्होंने खुद को यहूदी कहा। देखिए ये लफ्ज़ यहूदी अल्लाह ने नहीं दिया, नसारा या नसरानी नाम अल्लाह ने नहीं दिया, ये भी एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हर दौर के नबी की उम्मत को मुस्लिम का नाम दिया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में यहूद खुद को मुस्लिम कहते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जो हवारी थे उन्होंने खुद को मुस्लिम कहा, और ये सूरह सफ़ के एंड पे बिल्कुल आप पढ़ना चाहें तो उसका तर्जमा देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबा कराम ताबईन तबा ताबईन जो खैरुल कुरून वाले तीन अदवार थे उन सब ने खुद को मुस्लिम कहा। वो कैफियत जो आज उम्मत मुस्लिमा की हो गई कि हम मुस्लिम होने को काफ़ी नहीं समझते जब तक कि अपना कोई नाम न रख ले। तो बस ये समझ लीजिए कि आज जैसे आपको उम्मत मुस्लिमा में मुख्तलिफ नाम दिखते हैं ना, गिरोही नाम कह लीजिए, जिसमें आप फिर कवारियत के नाम कह लें, मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बस यहूद और नसारा एक किस्म का फ़िरका वाराना नाम है। आपको तौरात में लफ्ज़ यहूद का नाम नहीं दिखेगा, ये तो यहूदा की तरफ नस्बत करके ये यहूदी बन गए जो हज़रत याकूब के सबसे बड़े बेटे थे। इसी तरह नसारा या तो नासरा नाम की बस्ती या फिर नहनु अंसारुल्लाह के लफ्ज़ पे नस्बत करते हुए बना। तो याद रखिए नबियों की ज़िंदगी के लोग मुख्तलिफ होते हैं। वक्त के साथ शम्मा से दूरी पे जैसे अंधेरा हो जाता है ना, इसी तरह लोग फिर अपने नाम रखते हैं। यही कहानी आज उम्मत मुस्लिमा की है। दुआ कीजिए हम सबको अल्लाह ताला लफ्ज़ मुस्लिम पे मुतमईन कर दे। उसके बाद आगे आप देखिए कि इनके जो जुर्म हैं वो क्या थे कि वो जुल्म करते थे, नाइंसाफ़ी करते थे, दूसरों की हक तलफी करते थे, और चौथी बात क्या है कि दूसरों को कसरत से अल्लाह की राह से रोकते थे, और पांचवा इनका जुर्म सूदखोरी करते थे। अब पांच उंगलियों पे अगर आप ये पांच जुर्म लिख लें तो क्या ये बर्दाश्त किए जाने वाले जुर्म हैं? देखिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है ना, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इधर सब के साथ इंसाफ हो, सबको उसके हकूक मिले। लेकिन जब कुछ लोगों की वजह से माशरे का बिगाड़ फैल जाता है, अल्लाह के कानून में तब्दीलियाँ होती हैं, तो फिर अल्लाह ताला को पूरा हक है कि ऐसे लोगों से नेमतों को छीन ले। उसके बाद आयत नंबर 162 में इसी गिरोह के नेक लोगों का भी तस्करा आ गया, और ये अंदाज़ तीसरी दफ़ा अभी तक के पारों में आ गया है कि अल्लाह ने किसी को सिर्फ उसके नाम से बुरा नहीं कह दिया कि फ़लाँ फ़िरका या फ़लाँ मज़हब है ही झूठा, उसमें नेक लोग होते हैं तो वो अच्छे थे। तो यहूद के नेक लोगों के लिए बशारतें क्या हैं? लाकिन रासिखून फ़िल इल्म मिन्हुम, उनमें भी अच्छे लोग हैं जो इल्म रसूख हासिल करते हैं, वल मोमिनून, और वो ईमान लाते हैं। तो रासिखून फ़िल इल्म कौन लोग होते हैं? अल्लाह पहले तो दुआ करें कि मुझे और आपको बना दें इल्म मज़बूत लोग, वो लोग जो सही मानों में डायरेक्ट सोर्सेज से इल्म लेते हैं। और आज उम्मत मुस्लिमा के बिगाड़, फितनों, आपस की नफ़रतों और दिलों के फटने का इलाज एक ही है कि आप कुरान और सुन्नत में रसूख हासिल करें। ठीक है ये एक दिन का सफ़र नहीं है, लेकिन सफ़र शुरू तो कीजिए। देखिए आप क्या कहेंगे उस उम्मत को कि जिस उम्मत के बड़े तबके को नमाज का तर्जमा तक नहीं आता। रमज़ान के दिनों में हर घर में कम से कम एक पारा तो पढ़ा ही जाता है, 16 से 17 रुकू होते हैं किसी भी एक पारे में, और आखिरी पारों में तो 20-25 रुकू भी हैं। आपको समझ ही नहीं आता। इस वक्त इस इल्म की महफिल में अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह आज तक की ज़िंदगी में जो किया खूब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया का भी कुछ पढ़ लिया, शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब बच्चों की शादियाँ भी हो गई, जो जो आपके हालात हैं, अब मुझे इल्म के लिए खालिस कर दें। हर साल रमज़ान के बाद हम लोग नई क्लासेस शुरू करते हैं डिफरेंट लेवल की, खुद ढूंढिए। आप जाकर nurulquran.com पे कोर्सेज के अंडर में जाइए, जो कोर्स आपको अपने लिए अच्छा लगता है उसको ज्वाइन करें। बात समझ ना आए तो दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कीजिए, कहीं से भी कुछ सीखिए, लेकिन इल्म में मजबूती लानी है। दूसरी राह से खून इल्म की तारीफ क्या की जाती है? अल्लाह के लिए आजजी करने वाले। आप देखिए कि कभी कभी लोग इल्म लेने के बाद सख्त हो जाते हैं, स्टबन, एक तो तकब्बुर है, अकड़ है, एक फ़ख्र की कैफियत आने लग जाती है। और वो क्या है कि हम बहुत इल्म वाले हैं। कभी कभी आपने देखा कि कुछ लोग जब इल्मी बातें करते हैं ना, तो अंदाज़ में गुस्सा होता है, लाउड आवाज़, गुस्से का अंदाज़। ये दुरुस्त नहीं। इल्म जितना पुराना होगा उतना आपको नरम करेगा। इसकी मिसाल याद रखिए, नया कपड़ा अकड़ा हुआ, कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, खड़खड़। जितना कपड़ा धुलता जाता है, इस्तेमाल होता है, पुराना होता है, नरम होता है। जिसके पास थोड़ा इल्म होगा ना, वो बहुत अकड़ेगा और बड़ी अपनी फरमाइशें भी रखेगा लोगों के सामने, मेरी ये बात माने तो वो माने। लेकिन जिसका इल्म पुख्ता होता जाएगा, जिसको अल्लाह सुबहाना ताला इल्म में और इजाफा देते जाएंगे ना, उसकी बात में आजजी, नरमी, वो इंसान को इंसान समझेगा। उस्ताद और शागिर्दों में क्या फ़र्क होता है आपको पता? वो बात जो उस्ताद को पहले पता चल गई, शागिर्दों को बाद में पता चलेगी। बस इतना फ़र्क है। आप बाहर की अवाम, जिनको लोग कला नाम कहते हैं, उन तक वो बात नहीं गई जो आप तक पहुंच गई, तो अकड़ने की क्या बात है? आप प्यार से, मोहब्बत से लोगों को दीजिए इल्म। तो इसमें आप में से जिसको अपने इल्म पे कोई मान है, कोई गर्र है, वो चेक करे कि मेरे अंदर आजजी है कि नहीं। तीसरी चीज़, अल्लाह की रज़ा की तलब। जो भी करना है इसलिए कि रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन। तो इस वक्त भी आपका मेरा ये सब सुनना, ये सब देखना और ये सब कुछ नोट करना, सोचिए किसकी रज़ा के लिए क्यों करी हूँ। और फिर इसी तरह से मुनकसिरुल मिजाज, इनकी सारी उर्दू में बोलते हैं, अगर आप इस लफ्ज़ को ज़रा सा ब्रेकअप करें ना, कसरा से, कसर कहते टूटने को, इनकी सारी क्या होती है, बंदा टूट गया, ब्रोकन। और ये ना हो तो इल्म बहुत ज़्यादा वबाल का ज़रिया बनता है। तो अल्लाह ताला हमें रासिखून फिल इल्म बना दे। इसके बाद आयत 163 से 164 का टॉपिक, अंबिया के प्यारे नामों का गुलदस्ता। आपको याद है पीछे भी अंबिया कराम का तذکرہ हुआ था, लेकिन इस मुकाम पे आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। मसलन, इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला, अब आप गिनते जाइए, नूहिन, वन नबीयीन मिन बादिही। फिर इसमें आप देखिए, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादें, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान, और हमें दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम मिलता है, और फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम का। यानी 18, तकरीबन 18 नबियों का नाम अल्लाह ताला ने इधर पेश करके अगली आयत में क्या कहा, रुसुलन मुबशरीन व मुनजरीन। ये तो वो रसूल थे जो खुशखबरियां भी देते थे और वार्निंग्स यानी डरावे भी देते थे। क्यों देते थे? लियल्ला यकून लिन्नासी अलल्लाह हुज्जा, ताकि कल अल्लाह के खिलाफ लोगों को कोई हुज्जत ना मिले। क्या कि हमें कोई नबी नहीं दिया, हमारे पास तो कोई वार्नर नहीं आया, कोई ग्लैड टाइडर नहीं आया। यहाँ हमने एक नोट की होगी चीज़, मुबशरीन का लफ्ज़ पहले आया है, बिशारत, खुशखबरियाँ। हाँ, फिर इंजार। तो दावत का आगाज इंजार से ना कीजिए, ये सुन्नत के खिलाफ है। पहले खुशखबरियां दीजिए, फिर जो लोग सारा कुछ सुन सुनाकर भी ना माने तो फिर उनको आगाह करना। यही असूल आप अपने बच्चों में रखें, यही आप अपने सारे वो लोग जो आपके अंडर है उनके साथ रखिए। और उसके बाद फिर आप आयत 166 से 169 का टॉपिक लिख लें, कुरान की हक्कानियत यानी सच्चाई का बयान जलाली असलूब में। आपको इन आयात में अल्लाह ताला का जलाल दिखेगा और अल्लाह सुबहान ताला को इस चीज़ का हक है कि वो जलाल से बात करे। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अनज़ला इलैक, फरमाया अल्लाह ताला तो गवाही देता है उस बात की जो उसने आपके ऊपर नाजिल किया है, और जो कुछ भी उसने नाजिल किया उसने अपने इल्म के साथ किया है। और फरिश्ते वो भी गवाही देते हैं, किस बात की, वकफा बिल्लाह शहीदा, क्या पता चला कि अल्लाह बिला सनद कोई बात नहीं करते। अल्लाह सुबहान तआला ने सारी हुज्जतें पूरी की और फरिश्तों की भी यहाँ बात करके ये और बात कर दी कि मेरा एक क्रिएशन प्लान है, उसको फॉलो करोगे तो दुनिया में अमन होगा। और जो लोग इन्नल्लज़ीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह का कुफर करेंगे और उसके रास्ते से रोकेंगे, वो तो दूर के भटक गए। आज हम मुसलमानों को इस आयत पे गौर करने की ज़रूरत है। बग़ैर इल्म के हम बहसें करते हैं, हमारा हाल ये है कि हम ना इल्म पे वक्त लगाना चाहते हैं और ना हमारे अंदर वो तकवा और खशियत है जो इल्म का तोहफा होता है, लेकिन हम बातें बहुत बड़ी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में आगे नल्लज़ीन कफरू वज़लमू, ऐसे सख्त लफ्ज़ बोल कर बता दिया कि फिर अल्लाह ऐसे लोगों से कोई वादा नहीं करता क्या कि लियाफ़िर लहुम, कि अल्लाह उनको बख्शे, वला लियहदियहुम तरीक, और ना उनको रास्ते सुझाएगा। हाँ एक रास्ता है, इल्ला तरीक जहन्नम। याद रखिए जब लोग अल्लाह की मर्ज़ी को नहीं मानेंगे तो अल्लाह को हक है कि वो उनके नेविगेटर में लफ्ज़ जन्नत निकाल कर जहन्नम डाल दे। और कितनी देर? खालिदीन फीहा अबदा। आपको इसमें जलाल महसूस हो रहा होगा। वकाना ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, ये बात अल्लाह पे बहुत आसान है। तो यहाँ बैठ कर दुआ कीजिए, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को इस इल्म के साथ जोड़ दे जो अल्लाह ने उतारा, और हम शहादत हक के गवाह बन जाएं, और ये जितने भी यहाँ बुरे अंजाम दिखाए गए अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। इसके बाद नबी सल्लम पर ईमान लाने की दावत सारी इंसानियत को, आयत 170 बहुत खूबसूरत आयत है, और आपके मेरे लिए, और ख़ास तौर पर जो लोग वेस्ट में रहते हैं जिनको नॉन मुस्लिम लोगों से वास्ता पड़ता है, उनको एक खूबसूरत पैगाम दिया जा रहा है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, बस ये लफ्ज़ दिल पे लिख लें। हमारी आपकी खुशफहमी दूर हो जानी चाहिए इस लफ्ज़ को सुनकर, क्या कि ये कुरान मुसलमानों की किताब है सिर्फ? या अय्युहल्लज़ीना आमनु से भरी हुई सूरतें भी आप देखते हैं सूरत मायदा में, लेकिन या अय्युहन्नास, और ये लफ्ज़ कितने कुफार के दिलों के ताले खोल देता है। ओ मैनकाइंड, ओ लोगो, तो ये कुरान रब का पैगाम इंसानियत के नाम पहुंचाएगा कौन? अल्लाह के नबी और आपके अस्हाब जो थे वो तो पहुंचा गए अपने अपने वक्त में, आज कौन पहुंचाएगा? वक्त सहली का जाल नाकुम उम्मतम वसता, आप और मैं पहुंचाएंगे। आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वालों को पहुंचाएंगे, आप इंडिया में तो इंडिया वालों को पहुंचाएंगे, हम अमेरिका में, नॉर्वे में, कनाडा में, जहां का मुसलमान बैठा सुन रहा है उसका ये फ़र्ज़ है। जिस रंग में, कॉल से, अमल से, डीलिंग से, दर्द रखिए, पूरी दुनिया में फैलिए और इस पैगाम को आम कीजिए। और ये इतना खूबसूरत पैगाम है, इतनी इसमें कशिश है कि अगर आप इसको वाकई मोतदिल अंदाज से पेश करें तो अल्लाह ताला इसमें तासीर डाल देता है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह पहले मैं खुद इस पे अमल वाला बना दे। जिसका अपना अमल होगा ना उसकी बात में असर होगा। आप अपने बच्चे को कोई बात कह रहे हैं तो पहले चेक कीजिए कि आप खुद तो वो काम नहीं करती। अल्लाह के नबी के पास एक बार एक औरत अपने बच्चों को ले आई और कहने लगी कि इनको मना करें कि मीठा ना खाएं, और इत्तफाकन आपने उस वक्त कोई मीठी चीज़ खाई भी थी। कहा कल आना। कहा क्यों? कहा कि अभी तो मैंने भी खाया, अगर मैं इनको कहूँगा तो मेरी बात में असर नहीं होगा। अल्लाह हमें अपने ऊपर गौर व फिक्र की तौफीक दे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो आयत नंबर 171 में ईसाइयों को एतदाल पर रहने की दावत है, बैलेंस्ड रहो। याद रखिए कि किसी चीज़ की कमी बेशी टेस्ट को बदलती है। हम ख़वातीन हैं, खाना बनाती हैं, नमक ना डालें तो खाने का टेस्ट, या फिर असल से दुगना डाल दें तो क्या होगा? मज़े का खाना कौन सा होता है? बैलेंस्ड। चीनी ना डालेंगे तो स्वीडिश कैसी होगी? बस दीन के हर मामले में इस असूल को सामने रखिए। एग्जेजुरेशन, एक्सट्रीमिज्म, हदों से गुजरना किसी रंग में भी पसंदीदा नहीं। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ाना तौर पे पैदा किया। यहूद ने नफ़रत की वजह से उनके कत्ल के इरादे करके बल्कि दावा कर दिया कि हमने उनको कत्ल कर दिया। नसारा दूसरी हद पे चले गए कि वो तो नौज़बिल्ला अल्लाह का बेटा और बल्कि अकलौता बेटा है। अल्लाह ताला ने यहाँ क्या कह दिया? या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, यहाँ लफ्ज़ ग़लूब आया, पीछे भी इस पे बात हुई थी, आगे भी ये आएगा सूरत अल-अनाम में। हद से बढ़ाना, एग्जेजुरेट करना, वला तकूलु अल्लाह इल्ला हक, अल्लाह पे हक के सिवा और कोई बात ना कहा करो। कौन है मसीह? इन्नमल मसीह हुई सबनु मरियम, मसीह तो ईसा इब्ने मरियम है, अल्लाह के रसूल हैं, उसका कलिमा है जिसको अल्लाह ने मरियम की तरफ डाल दिया था और रूह है उसकी तरफ से। ये पूरा नाम है हज़रत ईसा का। आप देखें इसमें उनका माँ के साथ ताल्लुक़ भी है और उनकी मौजाना पैदाइश के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिए। यानी मसीह इब्नुल्ला नहीं है बल्कि इब्ने मरियम है। तुम क्या करो? फ़ामिनु बिल्ला, बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, यानी तुम ईमान लाओ अल्लाह पे, उसके रसूलों पे। वला तकूलू सलासा, ये ना कहा करो कि तीन है, यानी ट्रिनिटी। تسلیس کے عقیدے کا رد ہے. ان تہو باز آ جاؤ اس سے, خیر اللہ کم بہتر ہوگا تمہارے لیے. پھر حقیقت کے انم اللہ الہ واحد, اللہ تو ایک ہے, اکیلا ہے, سبحانہ ہو, وہ پاک ہے. اس سے کیا این یکون لہ ولد, کہ اس کی اولاد ہو. آپ دیکھیں اولاد کی ضرورت تو انسانوں کو ہے, انسان کمزور ہے, وقت کے ساتھ بوڑھا ہوگا, بیمار ہوگا, پھر چلا جائے گا. اس کا دل کرتا ہے کہ میری پیچھے کوئی وارث ہو. اللہ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے, کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کے لیے تو آسمان و زمین کی سب چیزیں. تمہاری اولاد پتہ نہیں تمہاری فرما بردار ہے کہ نہیں, تمہارے بچے پتہ نہیں تمہاری بات مانتے ہیں کہ نہیں, لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بات مانتا ہے. اور وکفا باللہ ہی وکیلا, اس کے باوجود بھی اگر تم اپنی مرضیاں کرو گے تو اللہ وکیل ہے. مراد ہے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر نظریں رکھا ہوا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی آج, دیکھیں ہم دوسروں کی باتیں سن رہے ہیں, آج ہم میں سے تو کسی کے الحمدللہ یہ نظریات نہیں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ایسے تھے. تو پھر اللہ آپ کو مجھے قرآن میں یہ کیوں سنا رہا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کرو. جیسے پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کے بارے میں ایگزیجوریشن کیا, آج کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ظلم کرتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کا کیا مقام تھا؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. تو بار بار دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے. آگے آیت 172 سے 173 میں موضوع کیا ہے؟ مرتبے کی بلندی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ہے. جو جتنا اللہ کے آگے جھکے گا نا, اللہ اس کو اتنی عزت دے گا. لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ, پیچھے نصارہ کی بات کر دی کہ وہ تو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں اور تسلیس کے عقیدے کے حامل ہو گئے, حالانکہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ایسا نہیں تھا. یہ بعد کی ساری باتیں ہوتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ کون تھے؟ اگر آج کوئی حضرت عیسیٰ کو بلوائے تو وہ کیا بولیں گے؟ جو ماں کی گود میں بولے تھے, انی عبداللہ. انشاءاللہ سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے پہلا کلام حضرت عیسیٰ کا جو تھا وہ انی عبداللہ تھا. آج کرسچینٹی کے سارے نظریات کو بالکل باطل کرنے والا جملہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو تو بالکل اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ خود کو عبداللہ کہیں, اور نہ فرشتوں کو جو مقربین ہیں, اور نہ ان کو عبادت سے انکار ہے, نہ وہ تکبر کرتے ہیں. اللہ سب کو لے جائے گا. تو آپ کو مجھے بھی اگر عزت چاہیے تو جھکنا پڑے گا. اس لیے کہا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آج آپ کی میری عزت, میری اور آپ کی بلندی کس میں؟ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, اللہ پورے پورے ان کو اجر دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, کچھ ایکسٹرا بھی دے دے گا, کچھ بونس مل جائے گا اپنے فضل سے. لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, وَاسْتَكْبَرُوا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اللہ ان کو بڑا دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, پھر وہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار. تو کیا پتہ چلا آپ کی میری نجات بھی کس چیز میں ہے؟ کہ ہم آمنو کے بعد عمل الصالحات کریں.